एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है।
हाँ बिल्कुल, यह है ब्रायन ग्रीन की द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मोस। नाम ही कितना दिलचस्प
है ना। और ये किताब हमारे स्पेस, टाइम और रियलिटी, मतलब अंतरिक्ष, समय और जो सच हम देखते हैं, उसकी पूरी समझ को हिला देती है।
सही कहा। और ये सिर्फ कोई साइंटिफिक थियरी की बात नहीं है, है ना? ये तो हमारी अपनी दुनिया, हमारे होने के मतलब से जुड़ा है।
बिल्कुल, मतलब क्या चीजें वाकई वैसी है जैसी हमें लगती हैं? आज की दुनिया में ये सवाल और भी जरूरी हो गए हैं।
तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। ये ब्रायन ग्रीन हैं कौन?
हाँ, ब्रायन ग्रीन ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं।
और इनका खास काम?
इनका मेन काम है थ्योरेटिकल फिजिक्स में, खासकर सुपर स्ट्रिंग थ्योरी। ये बहुत आगे की चीजें हैं जहां वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के सारे नियम एक कैसे हो सकते हैं।
अच्छा, वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वाली बात। मैंने इनकी पहली किताब द एलिगेंट यूनिवर्स के बारे में भी सुना था, काफी मशहूर हुई थी।
हाँ वही। ग्रीन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो फिजिक्स के इतने मुश्किल आइडियाज को, जिनमें बहुत मैथ्स होती है,
हाँ,
उन्हें कहानियों की तरह आम भाषा में समझा देते हैं, उपमाएं देते हैं, सोचने वाले एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं।
मतलब रटना नहीं, समझना। ये भी बताते हैं कि कैसे सोचा गया, क्यों पुरानी बातें गलत साबित हुईं।
बिल्कुल, वो पूरी जर्नी दिखाते हैं, न्यूटन से आइंस्टाइन तक कैसे सोच बदली।
दिलचस्प। तो ये किताब द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मोस हमें किस सफर पर ले जाती है, क्या है इसका निचोड़?
निचोड़ ये है कि हमारी जो आम समझ है ना स्पेस और टाइम के बारे में, कि स्पेस खाली जगह है, टाइम बस आगे बहता रहता है।
हाँ बिल्कुल,
वो शायद पूरी सच्चाई नहीं है। ग्रीन बताते हैं कि फिजिक्स की नजर से देखो तो स्पेस और टाइम दोनों बहुत लचीले हैं, डायनामिक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
किताब हमारी इसी सीधी साधी समझ को बदलने की कोशिश करती है।
तो एक तरह से ये ब्रह्मांड का यूजर मैनुअल हुआ जो न्यूटन से शुरू होकर आइंस्टीन और फिर क्वांटम तक जाता है।
हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए।
शुरुआत होती है न्यूटन के यूनिवर्स से, एक फिक्स स्टेज और एक घड़ी जो सबके लिए एक ही स्पीड से टिक टिक कर रही है,
जो हमें लगता भी है रोज।
सही। फिर आते हैं आइंस्टीन, वो कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, स्पेस और टाइम तो असल में एक ही चीज के दो पहलू हैं, स्पेस टाइम, और ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है।
और ग्रेविटी, वो भी बदल गई।
हाँ, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम का मुड़ना है, जैसे भारी चीज रखने से चादर मुड़ जाती है।
ओह।
और फिर क्वांटम मैकेनिक्स, जहाँ कुछ भी पक्का नहीं, सब संभावना है।
बिल्कुल,
वो अजीब दुनिया जहाँ कण एक साथ कई जगह हो सकते हैं। और किताब फिर बिग बैंग, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी,
स्ट्रिंग थियरी भी,
एक्स्ट्रा डायमेंशन, हाँ हाँ, होलोग्राफिक यूनिवर्स तक की बातें हैं। मतलब दिमाग तैयार रखिए, मजा आएगा।
चलिए तो गोता लगाते हैं पहले हिस्से में, वास्तविकता का अखाड़ा, स्पेस और टाइम। यहाँ वो हमारी सबसे बेसिक समझ पर सवाल उठाते हैं ना।
हाँ, शुरुआत होती है न्यूटन से। उनके लिए स्पेस क्या था? एक खाली डिब्बा, अनंत। और टाइम एक नदी जो सबके लिए एक ही रफ्तार से बह रही है, निरपेक्ष, मतलब एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम।
और हमें लगता भी तो ऐसे ही है रोजमर्रा में।
सही कहा। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने पूरी कहानी बदल दी, स्पेशल रिलेटिविटी।
उसका मेन आइडिया क्या था?
लाइट की स्पीड।
हाँ, कि लाइट की स्पीड सबके लिए सेम है, चाहे आप रॉकेट में हो या जमीन पर। ये सुनने में तो सिंपल लगता है।
हाँ,
पर इसके नतीजे बड़े अजीब थे। इसका मतलब निकला कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। आपकी स्पीड बदलेगी तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा, लंबाई सिकुड़ जाएगी। क्या मतलब? मेरा अभी और किसी दूर गैलेक्सी वाले का अभी अलग अलग हो सकता है, ये कैसे?
ग्रीन ने एक बढ़िया उदाहरण दिया है ब्रेड का। सोचिए स्पेस टाइम एक पूरी ब्रेड है।
ठीक है।
अब अलग अलग स्पीड से चलने वाले लोग उस ब्रेड को अलग अलग एंगल से काट रहे हैं, तो हर किसी के लिए अभी का टुकड़ा, मतलब स्लाइस ऑफ नाउ, अलग होगा।
तो स्पेस और टाइम अलग नहीं, एक ही चीज है, स्पेस टाइम फैब्रिक, चार डायमेंशन वाला।
बिल्कुल। और फिर आई जनरल रिलेटिविटी, जिसने ग्रेविटी को भी इसी फैब्रिक से जोड़ दिया।
कैसे?
आइंस्टाइन ने कहा ग्रेविटी कोई खिंचाव नहीं है, ये स्पेस टाइम का मुड़ना है। जैसे ट्रैम्पोलिन पर भारी बॉल रख दें तो चादर मुड़ जाती है ना?
हाँ, मुड़ जाती है।
वैसे ही सूरज या धरती जैसी भारी चीजें अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं।
तो हम धरती पर इसलिए टिके हैं क्योंकि हम मुड़े हुए स्पेस टाइम में फिसल रहे हैं, और धरती सूरज के चक्कर इसलिए लगा रही है क्योंकि वो सूरज के मोड़े हुए स्पेस टाइम में सबसे सीधा रास्ता ले रही है।
एग्जैक्टली। तो स्पेस टाइम कोई खाली स्टेज नहीं है, वो खुद एक एक्टर है। वो मुड़ता है, फैलता है, उसमें लहरें भी उठती हैं।
वाह, दिमाग घूम गया। अच्छा, स्पेस और टाइम जुड़े हैं, लचीले हैं, ठीक है, पर टाइम हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं? हम कल को याद रखते हैं, आने वाले कल को क्यों नहीं?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। एरो ऑफ टाइम यानी समय का तीर। फिजिक्स के ज्यादातर नियम तो टाइम सिमेट्रिक है, यानी आगे पीछे दोनों तरफ एक जैसे काम करते हैं।
तो फिर
इसका जवाब मिलता है थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम में, और एक कॉन्सेप्ट है, एंट्रोपी।
एंट्रोपी मतलब वो बिखराव, डिसऑर्डर।
हाँ, किसी सिस्टम में कितनी अव्यवस्था है उसका नाप। जैसे कमरा खुद साफ नहीं होता, गंदा होता जाता है।
या अंडा टूट गया तो वापस जुड़ता नहीं।
बिल्कुल। दूसरा नियम यही कहता है कि किसी बंद सिस्टम में कुल एंट्रोपी समय के साथ या तो बढ़ती है या वैसी ही रहती है, कम कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि चीजों के बिगड़े रहने के तरीके संवरे रहने के तरीकों से कहीं ज्यादा होते हैं।
अच्छा, तो टाइम इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि यूनिवर्स ज्यादा से ज्यादा डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है।
हाँ, पर इसका एक और मतलब निकलता है।
क्या?
कि अगर यूनिवर्स लगातार ज्यादा अव्यवस्था की ओर जा रहा है, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा व्यवस्थित रहा होगा, एकदम कम एंट्रोपी वाली हालत में।
बिग बैंग के टाइम।
बिल्कुल। ग्रीन समय के तीर को सीधे बिग बैंग की शुरुआती कंडीशन से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत बहुत ही लो एंट्रोपी, मतलब हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में हुई थी, और तब से आज तक उसकी इसी ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ यात्रा को ही हम समय का गुजरना कहते हैं।
कमाल है, हमारी घड़ी का टिक-टिक करना बिग बैंग से जुड़ा है। चलिए अब जरा बड़े स्केल पर चलते हैं। तीसरा भाग, स्पेस टाइम और ब्रह्मांड। बिग बैंग की कहानी तो सुनी है।
हाँ, करीब 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स एक बहुत गर्म, बहुत डेंस पॉइंट से शुरू हुआ, तब से फैल रहा है, ठंडा हो रहा है।
इसके सबूत भी हैं?
हाँ, दो बड़े सबूत हैं। एक तो गैलेक्सीज का हमसे दूर भागना, हबल का नियम, और दूसरा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB, बिग बैंग की बची हुई हल्की गर्मी जो आज भी पूरे यूनिवर्स में फैली है।
लेकिन इसमें भी कुछ पेंच थे जिसे सुलझाने के लिए कॉस्मिक इन्फ्लेशन का आइडिया आया।
हाँ, इन्फ्लेशन कहता है कि बिग बैंग के फौरन बाद, मतलब पहले सेकंड के बहुत ही छोटे से हिस्से में, यूनिवर्स ने गजब की तेजी से एक्सपेंड किया।
कितनी तेजी से?
कल्पना से भी परे, शायद एक सेकंड के खरबवे हिस्से से भी कम में, एक एटम के साइज से बढ़कर एक संतरे जितना बड़ा हो गया, या उससे भी ज्यादा।
बाप रे, क्यों हुआ ऐसा?
ये मॉडल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समझाता है कि हमारा यूनिवर्स इतना फ्लैट क्यों है और CMB हर दिशा में इतनी एक जैसी क्यों है। इन्फ्लेशन ने जैसे शुरुआती यूनिवर्स की सारी सिलवटें मिटा दी।
ठीक है, और फिर पता चला कि जो हमें दिख रहा है वो तो बस ट्रेलर है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी।
हाँ, ये आज के सबसे बड़े रहस्य हैं। जब गैलेक्सीज को देखा गया तो वो इतनी तेजी से घूम रही थी कि उनमें जितने तारे और गैस दिखते हैं उनकी ग्रेविटी उन्हें रोक ही नहीं सकती थी, वो बिखर जानी चाहिए थी।
तो
आइडिया आया डार्क मैटर का, कोई ऐसा अनदेखा पदार्थ जो रोशनी नहीं छोड़ता पर उसकी ग्रेविटी है जो गैलेक्सीज को बांधे हुए है।
और डार्क एनर्जी वो क्या वाला है?
वो तो और भी अजीब निकली। 1990s में पता चला कि यूनिवर्स का फैलाव धीमा नहीं हो रहा बल्कि तेज होता जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है।
तेज क्यों?
इससे समझाने के लिए आई डार्क एनर्जी, स्पेस में ही फैली हुई कोई अजीब सी एनर्जी जिसमें एंटी ग्रेविटी जैसा असर है जो हर चीज को दूर धकेल रही है।
और सबसे हैरान करने वाली बात
कि हम यानी तारे, ग्रह, इंसान, ये सब जिस नॉर्मल मैटर से बने हैं वो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ
5% है।
सिर्फ 5%, बाकी करीब 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी। सोचिए, हम यूनिवर्स के 95% हिस्से के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते।
ये तो सच में विनम्र कर देने वाली बात है, हम कितना कम जानते हैं। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा अजीब है, क्वांटम की दुनिया, चौथा भाग।
हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स। ये बहुत छोटे लेवल की फिजिक्स है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, और इसके नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। पहला बड़ा आइडिया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत।
हाँ, वो वाला कि आप किसी कण की पक्की जगह और पक्की स्पीड एक साथ नहीं जान सकते।
बिल्कुल, एक को जितना सटीक नापोगे दूसरा उतना ही धुंधला हो जाएगा। मतलब छोटे लेवल पर चीजें थोड़ी फजी हैं, एकदम क्लियर कट नहीं।
और वो सुपरपोजिशन, कि ये कण एक ही टाइम में कई स्टेट्स में हो सकता है।
हाँ, एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, या दो एनर्जी लेवल में एक साथ हो सकता है। वो एक संभावना की लहर जैसा होता है।
लहर?
हाँ, प्रोबेबिलिटी वेव। और वो एक निश्चित स्टेट तभी चुनता है जब हम उसे देखते हैं या मेजर करते हैं। इसे कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। जैसे हमारा देखना ही उसे मजबूर कर रहा है कि भाई तय कर लो कहाँ हो।
ये तो बहुत अजीब है। और फिर वो क्वांटम उलझाव वाली बात, जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था।
हाँ, क्वांटम एंटैंगलमेंट, ये शायद सबसे मिस्टीरियस चीज है। आप दो पार्टिकल्स को ऐसे उलझा सकते हैं कि वो एक टीम बन जाएं, फिर उन्हें चाहे मीलों दूर ले जाओ।
तो
अगर आप एक पार्टिकल का कोई गुण नापते हो, मान लो उसका स्पिन, तो दूसरे पार्टिकल का स्पिन उसी पल तय हो जाता है।
इंस्टेंटेनियसली,
तुरंत, लाइट की स्पीड से भी तेज। ये कैसे मुमकिन है? आइंस्टाइन का नियम नहीं टूटता? नहीं, क्योंकि इससे आप कोई मैसेज तुरंत नहीं भेज सकते। ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं है। लेकिन ये हमारी लोकैलिटी की सोच को चैलेंज करता है कि कोई चीज सिर्फ अपने पड़ोस से ही असर डाल सकती है। ये दिखाता है कि क्वांटम लेवल पर गहरे नॉन लोकल कनेक्शंस हैं।
सिर चकरा रहा है मेरा तो। और इन दोनों महान थ्योरीज, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने की भी तो चुनौती है।
हाँ, यही आज की सबसे बड़ी पजल है। रिलेटिविटी बड़े स्केल पर काम करती है, ग्रह, तारे, गैलेक्सी। क्वांटम छोटे स्केल पर, एटम, पार्टिकल, दोनों अपने अपनी जगह परफेक्ट हैं,
पर साथ में
काम नहीं करती। जहां दोनों की जरूरत हो, जैसे ब्लैक होल के अंदर या बिग बैंग के ठीक समय पर, वहां मैथ फेल हो जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ रहे हैं, एक मास्टर चाबी।
और यहीं से आता है पांचवा भाग, वास्तविकता और कल्पना। स्ट्रिंग थ्योरी इसी कोशिश का हिस्सा है।
हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी एक बड़ा कैंडिडेट है और इसका आइडिया ही बड़ा क्रांतिकारी है। ये कहती है कि सबसे बुनियादी चीजें पार्टिकल नहीं, बल्कि ऊर्जा के बहुत छोटे वाइब्रेट करते हुए धागे हैं, स्ट्रिंग्स।
धागे, जैसे वायलिन के तार?
हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे तार अलग अलग तरह से कांप कर अलग अलग सुर निकालते हैं, वैसे ही ये स्ट्रिंग अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करके अलग अलग पार्टिकल बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक तरह का वाइब्रेशन, क्वार्क दूसरा।
और ग्रेविटी?
कमाल की बात यह है कि ग्रेविटी पैदा करने वाला पार्टिकल, ग्रेविटॉन, भी स्ट्रिंग के खास वाइब्रेशन से अपने आप निकल आता है, थ्योरी में फिट बैठता है।
ये तो सुनने में बड़ा एलिगेंट लगता है, पर सुना है इसमें कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन भी सही है।
हाँ, यही इसकी एक अजीब बात है। मैथ्स ठीक बैठे, इसके लिए थ्योरी को 3 स्पेस डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अलावा 6 या 7 और स्पेस डायमेंशन चाहिए, कुल 10 या 11।
10 स्पेस डायमेंशन? वो कहाँ है, हमें क्यों नहीं दिखते?
थ्योरी कहती है कि वो एक्स्ट्रा डायमेंशंस बहुत ही छोटे स्केल पर मुड़े हुए हैं, कर्ल्ड अप हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें देख या महसूस नहीं कर सकते।
और फिर एम थ्योरी, ब्रेन्स, ये क्या है?
एम थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी का ही एक और एडवांस्ड वर्जन समझ लीजिए। इसमें स्ट्रिंग्स के अलावा ब्रेन्स भी हैं। हो सकता है हमारा पूरा 3D यूनिवर्स ही एक बड़े हायर डायमेंशनल स्पेस में तैरती हुई एक ब्रेन हो।
हमारा यूनिवर्स एक झिल्ली पर, और फिर वो होलोग्राफिक प्रिंसिपल कि हमारी 3D दुनिया असल में 2D जानकारी का एक होलोग्राम है। ये सब तो साइंस फिक्शन जैसा है।
है तो, ग्रीन भी मानते हैं कि आइडियाज अभी बहुत स्पेक्यूलेटिव है, मतलब अटकलें ज्यादा हैं, सबूत कम, इन्हें टेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। पर ये दिखाते हैं कि रियलिटी कितनी अजीब हो सकती है। क्या पता हम किसी सिमुलेशन में जी रहे हो, सोचने में क्या हर्ज है।
वाह, ये वाकई एक दिमाग खोलने वाला सफर था। अगर इस पूरी बात से कुछ खास संदेश निकालने हो तो क्या होंगे? मेरे लिए तो पहला ये है कि भाई, वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी दिखती है, हमारी कॉमन सेंस हमें धोखा दे सकती है।
मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरा, कि स्पेस और टाइम स्टैटिक बैकग्राउंड नहीं है, वो एक्टिव प्लेयर्स हैं, वो जुड़े हैं, मुड़ते हैं, फैलते हैं, वो खुद कहानी का हिस्सा हैं।
तीसरा, समय का तीर ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं बल्कि यूनिवर्स की हिस्ट्री का, उसकी शुरुआत की खास कंडीशन का नतीजा है, एंट्रोपी की कहानी है।
हाँ, और चौथा, क्वांटम दुनिया की अजीब बातें सच हैं। छोटे लेवल पर चीजें पक्की नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक है, और हमारा देखना भी असर डालता है, ये निश्चितता वाली सोच को हिला देता है।
और पांचवा, एकीकरण की तलाश। फिजिक्स का सपना है एक ऐसी थ्योरी जो सब कुछ समझा दे, एक सिंगल खूबसूरत फ्रेमवर्क।
ये सब बड़े गहरे विचार है, पर क्या इनका हमारी रोज की जिंदगी से भी कोई लेना देना है या बस सिर घुमाने के लिए है?
नहीं, मुझे लगता है असर पड़ता है, सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली। पहला तो है बौद्धिक विनम्रता, ये जानना कि हम कितना कम जानते हैं हमें दूसरों की बातों के लिए ज्यादा ओपन बनाता है।
सही कहा। दूसरा, ये अचरज और विस्मय जगाता है, यूनिवर्स की विशालता, उसके नियम, ये सोचकर अपनी परेशानियां थोड़ी छोटी लगती हैं, एक सेंस ऑफ वंडर आता है।
तीसरा, ये क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, विज्ञान सवाल पूछना है, सबूत मांगना है, मान लेना नहीं, ये स्किल तो हर जगह काम आती है।
और तकनीकी तौर पर भी तो है, GPS ठीक चले इसके लिए रिलेटिविटी का हिसाब रखना पड़ता है, कंप्यूटर चिप्स, लेजर, MRI, सब क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है, तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं।
और वो जुड़ाव वाली बात, एंटेंगलमेंट से लेकर स्ट्रिंग थ्योरी तक सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम का साइंटिफिक वर्जन हो।
हाँ, ये भी है। अच्छा, अंत में आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा इस सबसे?
मेरे लिए शायद यही एहसास कि यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा रहस्यमय है, और ये कि सवाल कभी खत्म नहीं होते, स्पेस और टाइम अब मेरे लिए पहले जैसे नहीं रहे।
और मेरे लिए शायद वो क्वांटम एंटेंगलमेंट और ये आइडिया कि रियलिटी देखने वाले पर निर्भर करती है, ये सोचना ही मन को झकझोर देता है, और ये कि जिसे हम खाली जगह कहते हैं वो असल में क्वांटम एक्टिविटी का उबलता हुआ सूप है, हम अभी सतह को ही खरोंच रहे हैं।
सच में खोज जारी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।